اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور خوبصورت دن دیا کہ ہم اس کی کتاب میں سے ایک اور خوبصورت پارہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے میرے وقت میں، فہم میں، سمجھ میں برکت دے، آپ کو بالکل نیند نہ آئے اور مجھے بھی بالکل اللہ تعالیٰ کلیئرٹی دے دے. اللہم ایتنا بروح القدس. آئیے شروع کرتے ہیں اور اپنے اپنے ماحول کو خود چیک کیجئے، آپ کس ماحول میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، کیونکہ جب تک قرآن پاک پڑھنے کے دوران آپ کا میرا پورا فوکس نہیں ہوتا، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتے. شروع کروں گی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. دورہ قرآن 2023، ڈی کیو 2023. آج ہم اس کا پارہ نمبر 4 کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس خوبصورت پارے کو سمجھنے کے لیے اس سال جو موضوع دیا ہے وہ ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عن. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور ہم ہر رکوع میں سے پوائنٹس نوٹ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کی نایات کی روشنی میں کیا رویے اختیار کریں، کیا کام کریں کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے. تو سب سے پہلے تو دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو جائے. صحابہ کرام ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل تھے. ہم ہر پارے کے ساتھ عظمت صحابہ کے نام پر کچھ باتیں نوٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے اپنے دلوں میں بھی اور کل ہم اپنی نسلوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ صحابہ کرام کیوں اللہ کی نظروں میں اتنے پیارے تھے. تو آج کے اس پارے کا تھیم صحابہ کرام کی نظر، جس سے آپ کو صحابہ کرام کی عظمت دکھے گی، وہ کیا ہے؟ دین ان کے لیے محبوب ہو گیا. آپ چوتھا پارہ بھی شروع کرنے لگے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے کہ پہلا ہی جملہ کیا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی یا بھلائی پہ پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی من پسند چیز اللہ کے رستے میں نہ دے دو. صحابہ کرام نے اس پر مادی چیزیں کیا دی، گھوڑے کیا دیے، ابو داختہ نے گھر کیا دیا، اور اس میں آپ کو ابن عمر کا عمر کیا ملتا ہے، حضرت عمر کا کیا ملتا ہے، یہ سب تو ہم سنتے ہی رہے. لیکن آج اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں آج کی پرسنالٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لینا پڑے گا. تو دونوں تینوں چیزوں کو اکٹھا سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام کے لیے دین اتنا محبوب ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر خود کو پیش کر دیا کہ جب اس بستر پہ لیٹنا گو کہ ایک آنر بہت تھا، اعزاز بہت تھا، لیکن وہ موت کی دعوت بھی تھی. ہم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات جب پڑھی پہلے پارے میں، تو ہم نے دیکھا تھا کہ غار ثور، اس کی تین راتیں، حضرت ابوبکر صدیق کو کہاں لے گئی؟ کہ حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں بھی ابو بکر کی ان نیکیوں سے مقابلہ نہ کر سکے. بالکل ایک ایسا ہی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ بھی آیا تھا کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ اس وقت سونا پسند کیا کہ جس رات اگر کوئی غلطی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لیتا تو وہ حضرت علی کی جان لے لیتا. تو عظمت صحابہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. یعنی اس سال جو کانسیپٹ میرے دل میں ہے آپ سب کے لیے بھی، لن تنالوا البر میں ہم کیا دیں؟ ہم اپنی جان دیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین والی آیت آگے آئے گی سورۃ توبہ میں، تو آپ سمجھیں گے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے. حضرت علی کے اس عمل پہ کسی نے بڑی محبت سے کچھ اشعار کہے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ شب ہجرت علی نے بھی عجب خدمت گزاری کی، ملک بھی جس سے حیران ہو گئے وہ جان نثاری کی. یعنی فرشتے بھی حیران تھے کہ حضرت علی اتنے بہادر ہیں. یہ تھی علی کی شجاعت. جری و مرد میدان طہور ایسے ہوتے ہیں، شجاعت اس کو کہتے ہیں बहादुर ऐसे होते हैं। नबी का सुन के हुक्मे पाक सीधे उनके घर आए, अगरचे सामने थी मौत लेकिन बेखतर आए। क्या पता चला कि साहबे कराम ने अपनी जान से बढ़कर इस दीन को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को महबूब जाना था। और ये ऐसी बड़ी खूबी है कि जिसकी आज उम्मत मुस्लिमों को ज़रूरत है। याद रखिए कि जब दीन आपके लिए महबूब बन जाता है ना, तो फिर दीन, दीनदार, दीन वाले, दीन से जोड़ने वाले, अल्लाह वाले सब प्यारे हो जाते हैं। फिर हर वो चीज़, जैसे वो दुआ है ना कि अल्लाह मैनी असलुका हुब्बका व हुब्बा मैं युहिब्बुका वल अमल लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक व हुब्बा अहब्बा इलैया मिम्मा इल्बारे तक बात जाती है। फिर आपको हर वो चीज़ प्यारी लगती है जो अल्लाह से जोड़ती है आपको। और मैं अक्सर एक मिसाल दे देती हूँ कि दीन को अपना बेबी बना लें। आप में से जो मैरिड सिस्टर्स और ब्रदर्स हैं वो जानते हैं कि बच्चे से जो मोहब्बत है ना, ये ज़रबुल मिसल है। हमने माँ की मोहब्बत को भी देखा और बाप की मोहब्बत को भी देखा, और औलाद की मोहब्बत भी माँ बाप से देखी। 5-6 बच्चे मिलकर एक माँ या एक बाप से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकते जितनी एक माँ या एक बाप अपने 6 बच्चों से प्यार करते हैं। तो आपके अगर 4 बच्चे हैं तो 5वां बच्चा दीन को, क्योंकि नोट कर लें, अपने सामने खोल लें, दीन इनके लिए महबूब चीज़ बन गया। कुर्बानियाँ आसान हो जाती हैं मोहब्बतों के साथ। हज़रत अली ने ख़ुद को नबी के बिस्तर पे क्यों लिटवाया कि चलो फिर क्या, नबी तो बच जाए, अल्लाह का नबी यहाँ से निकले ताकि दीन बच जाए। आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत अनफाल में, हिजरत की रात आपके घर के बाहर जो हिसार था, दुश्मन जान लेने पे खड़े थे, घिराव था आपका, क्या किया था आपने? आज भी घिराव और इस तरह की चीज़ें और इस तरह के धरने होते हैं, लेकिन उसको और इसको आप समझ ही नहीं सकते। अल्लाह के नबी की सारी कुर्बानियाँ दीन के लिए थी। तो लिखिए, दीन इनके लिए महबूब बन गया। याद रखिए कि ईमान इनके लिए महबूब था। सूरत हुजरात की आयत में अल्लाह ताला ने इस बात की गवाही दी है कि ज़य्यना क़ुलूबहुम लित्तक़्वा, उनके दिलों को अल्लाह ने तक्वा के लिए कबूल किया था। कहीं आते इम्तहान अल्लाह, अल्लाह ने उनका इम्तहान लिया। तो मोहब्बत किसी चीज़ से ताल्लुक़ का आखिरी दर्जा। अगर आप यहाँ लन तनालुल बिर्रा वाली आयत भी साथ ही शुरू कर लें तो इंशाल्लाह ये सारी बातें आपको उसके अंदर समझ आएंगी कि कैसे अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए इन चीज़ों को आसान किया। आइए ज़रा आयत खोल लेते और साथ ही साथ फिर इस सारे कॉन्सेप्ट को उन आयतों के तर्जमे के साथ समझेंगे, ताकि हम भी तो अपना जायज़ा लें कि कुरान तो हम भी पढ़ते हैं। और यहाँ याद रखिएगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की शान में हम चूँकि इस पारे को पेश करेंगे, तो इसमें दुआ भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की है। बहुत ही खूबसूरत दुआ है आज हमारे बारे में, हिफ्स करने की दुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, अन अलीन क़ाल क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह ने कहा। नोट करिएगा इस बात को कि साहबा कराम वो खुशकिस्मत लोग थे जिनको वन ऑन वन बेस नबी से बात करने का, उनसे इल्म लेने का मौका मिला। आज आप देखिए कि सैकड़ों लोगों के मजमे में बाज़ दफ़ा लोग बात करने को भी तरसते हैं, हाथ मिलाने को भी तरसते हैं, लेकिन साहबा कराम वो खुशबख्त थे कि वन बाय वन नबी से बात करते थे, मिलते थे। आज आपको अगर इमाम काबा से बात करने का, उनके पास बैठने का मौका मिल जाए तो आप खुशी महसूस करेंगे। इस शहर की किसी बड़ी अच्छी खातून जिनकी बहुत ही अच्छी शोहरत हो, आप उनके साथ बैठकर चाय पीने का मौका मिल जाए, आपको उनसे बैठकर 2 मिनट सिर्फ सलाम दुआ का मौका मिल जाए, तो क्या आपको खुशी होगी? बस इसको कई गुना बढ़ा लें। साहबा कराम के दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में चूर थे। वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे कि जिस मौके पे वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्ब हासिल करते। ऐसा ही एक मौका था, हज़रत अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे कि अल्लाह के नबी ने उनसे क्या कहा, कुल कहिए, यानी ये दुआ नबी ने ख़ास तौर पे हज़रत अली को सिखाई, अल्लाहुम्मा हदिनी वसद्दिदनी वस्कुर बिलहुदा हिदायतकत तरीक़ा वस्दादी सदादस सहम। क्या मतलब है? हज़रत अली कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मुझसे कहा, जब मुझसे फरमाया कि कहो ए अल्लाह मुझे हिदायत दे और दुरुस्तगी पर कायम रख और हिदायत से सीधी राह पर चलने की नियत रखो, दुरुस्तगी से तीर की तरह सीधा रहने यानी सीधी राह पर जमे रहने की नियत करो। कभी मांगी आपने ये दुआ, कभी पढ़ी आपने ये दुआ, कभी सुनी आपने ये दुआ? आप पता है कि आज भी हदीसों का एक ख़जाना सुन्नत और हदीस की किताबों में मौजूद है। तो आज से इस दुआ को याद कीजिए, और ख़ास तौर पे ये दुआ है कि जिसके लिए आप याद करें अल्लाह के नबी की वो बात जो मारूफ है कि अली इल्म का दरवाज़ा है। हज़रत अली के खसाइस को अगर आप इस दुआ की रोशनी में देखें तो उन्होंने ख़ास तौर पर क़ुरान को याद रखने वाली दुआ कराई। तो अल्लाहुम अहदिनी, ए अल्लाह मुझे हिदायत दे, बस सद्दितनी मुझे सीधा रख। सद दीवार को कहते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, तो सद्दितनी मुझे बिल्कुल सीधा रख दुरुस्तगी पे। हर मामले में मुझे आपको ज़रूरत होती है। दिन में 10-12 मामले ऐसे हमारे घरेलू ज़िंदगी के होते हैं, करना कुछ था कर कुछ दिया, नमक ज़्यादा डाल दिया, चीनी कम कर दी, ये कर दिया, चावल गल गए, बच्चे को गलत कह दिया, शौहर को कुछ कहना था, दादी को कुछ कहना था, सारा दिन। तो आप कहते हैं सद्दिदनी, अल्लाह मुझे सीधा रख, वस्कुर बिल खुदा, और मुझे हिदायत पे चलने की बात की, यानी मुझे सीधा रख और हिदायत से सीधी राह पर चलने की नीयत सिखाई। क्योंकि आपकी मेरी नीयत बड़ी अहम है। इस वक्त लोग तो हमारा ये एक नेकी का अमल देख रहे हैं ना, मैं कुरान पढ़ रही हूँ ये भी एक नेकी है, मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ रहे हैं, हम सुन सुना रहे हैं ना। लेकिन ऐ अल्लाह हमारी नीयत भी दुरुस्त रखना, इसकी भी दुआ करके यहाँ बैठा करें। और साथ ही साथ वस्कुर बिल हुदा हिदायत तरीक, तेरे सीधे रास्ते की हिदायत बहुत अहम है। हर नेकी का काम नेकी का नहीं होता, हर गुनाह का काम भी गुनाह का नहीं होता। एक शख्स के हाथ में किसी ने कहा तुम शराब की बोतल देखो, फिर भी उसको शराब पीना को, क्या पता वो शराब की बोतल तोड़ने जा रहा हो, फेंकने जा रहा हो। इसी तरह हर नेकी का काम ज़रूरी नहीं कि नेकी का हो। इन्नमल अमालु बिन्नियात वस्तादी सदादा सहम, जैसे तीर सीधा ठिकाने पे लगता है ना, इस तरह अपनी नीयतों को सीधा रखो। देखिए ये थी वो चीज़ें जिसकी वजह से सहाबा बाहर से ज़्यादा अंदर झांकते थे, जिनको दूसरों से ज़्यादा अपनी हिदायत की फ़िक्र होती थी, और फिर दीन उनके लिए महबूब बन गया। फिर जब मोहब्बत हो जाती है ना तो वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। और मोहब्बत का ताल्लुक जो है ना, किसी चीज़ से ताल्लुक का आखिरी दर्जा है कि आप उससे मोहब्बत हो जाए। अब मामलात अच्छे होते हैं, ताल्लुकदारियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है ना तो गैर भी अपना लगता है, बेगाना भी अपना लगता है। सहाबाए कराम को नबी सल्लम से ऐसी मोहब्बत हो गई थी, उनको अल्लाह के नबी से और अल्लाह के नबी के इस मिशन से इतनी मोहब्बत हो गई थी कि फिर वो हर चीज़ को पीछे डाल कर रखते। और लिखिए जिससे मोहब्बत हो जाती है ना, इंसान उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, उसका माइंड हरकत में आ जाता है, मुतहरक हो जाता है, मूवमेंट शुरू हो जाती हैं। इंसान बग़ैर बताए हुए उससे मुतल्लिक हर बात को जान लेता। आज भी देखिए जिनको जिनसे मोहब्बत होती है वो उनके बारे में सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनको क्या पसंद है, उनके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के। सहाबा का असल कारनामा ये था कि उनको दीन प्यारा हो गया और दीन की नस्बत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो गई। देखिए आपको जो अल्लाह से जोड़े ना, आप उससे ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहता। पीछे आप पढ़ कर आए हैं कूनू रब्बानी, चौथे पारे के आखिरी रुकू में बड़ा था, किसी नबी ने ये नहीं कहा कि मुझसे जुड़ो। लेकिन एक फैक्ट लिख लें, जो आपको अल्लाह से जोड़ेगा ना आप उससे ज़रूर जुड़ेंगे। माँ से बच्चा बिछड़ गया, किसी ने उस बच्चे को आके माँ से मिलवा दिया, सारी ज़िंदगी उस बंदे का एहसान नहीं बंदा देता। तो हकीकी बात है अम्बिया कराम, रसूल, आइमा कराम, उलमा कराम, उसातज़ा कराम, हमारे मेंटोर जो हमें अल्लाह से जोड़ते हैं ना, हमें उनसे मोहब्बत होती है। लेकिन उस मोहब्बत को सिर्फ उनकी ज़ात पे नहीं रोका, उस मिशन के राही बन गए, उसी पे चल पड़े। और हज़रत अली ने अपने आप को बिस्तर पे क्यों लिटाया और ये दुआएं अल्लाह के नबी से क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपका दिल दिमाग हर वक्त नबी सल्लम में अटका रहता था। अब वो क्या कर रहे होंगे? अब वो याद कीजिए ना, सहाबी उदास है। क्यों उदास है? कि अल्लाह के नबी आज ख्याल आ गया कि यहाँ जब मैं अपने कामों में होता और मुझे आपकी याद आती है तो मैं आके आपको देख जाता हूँ। कभी मस्जिद नबी में आप होते हैं, मैं आपको देखता हूँ मेरी आंखें ठंडी हो जाती, बस फिर मैं काम में लग जाता हूँ, फिर कभी आता हूँ तो इधर कभी उधर। अगर मैं जन्नत में चला गया तो फिर मुझे आपकी याद आएगी तो क्या करूँगा, क्योंकि मैं आपके वाली जन्नत में तो होऊंगा नहीं। पहुँच भी गया तो किसी इकोनॉमी क्लास में बैठा होऊंगा, आप तो VVIPs में होंगे, आप तो वसीला पे होंगे, आपको तो अल्लाह ने मुकाम महमूद देना है, आप तो जन्नत के आला मुकाम पे हैं। याद रखिए, आज हम मुसलमानों का असल प्रॉब्लम ये है, मेरा ये प्रॉब्लम है, आपका ये प्रॉब्लम है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बोझ कब लगता है? जब दीन प्यारा नहीं लगता, जब नबी से वो मोहब्बत नहीं होती। हज़रत अली बिस्तर पे अपने आप को लिटा रहे, हम होते 100 बातें करते, हम कहते मैं अल्लाह के नबी सिक्योरिटी भेज देता हूँ, 10 बंदे चाहिए पुलिस के भिजवा दूँ, मेरा फुला MA MNA से है रब्ता, ज़रा मैं उसको आपके घर के बाहर खड़ा कर दूँ, ये बहुत आसान है। याद रखिए, कभी माल देना बहुत आसान होता है, मेरे पास करोड़ों हैं, अगर मैं चंद लाख आपके ऊपर लगा भी दूंगी मेरा क्या जाएगा? मेरे पास वक्त बहुत है, अगर मैं अपने वक्त में 3-4 घंटे आपको दे दूंगी तो क्या बड़ा कारनामा है? खुद तू बचा बचा के न रख उसे कि तेरा आईना। सहाबा की खूबी ये थी कि उन्होंने मन पसंद चीज़ जो बंदे को हमेशा प्यारी होती है वो क्या होता है, मैं IM लिखे, IM आपके तो इनिशियल्स भी ये बन जाएंगे, IM मी माई सेल्फ, मेरा वजूद, मेरी मर्जी, मेरा घर, मेरी जात, मेरे कपड़े, मेरा पेन, मैं। सबसे ज़्यादा बंदे को मैं से प्यार होता है, ये ना इग्विस्टिक रवैये, मुझे ये कह दिया, मेरे साथ ये कर दिया। साहबा ने ये अपनी मैं पकड़ के अल्लाह को दे दी। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन, तुम तो नेकी के उस मुकाम को पा ही नहीं सकते जब तक तुम अपना आप रब को ना दे दो। कभी पैसे की भी ज़रूरत होती है, कभी वक्त की भी ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर अल्लाह को आपकी मेरी ज़रूरत है। मेरी सोचें हर वक्त अल्लाह के लिए, मेरा दिमाग अल्लाह के लिए चले, मेरे आइडियाज़ अल्लाह के लिए, मेरे प्लान्स अल्लाह के लिए, मेरी खुशियाँ अल्लाह के लिए, मेरे अच्छे कपड़े अल्लाह के लिए, मेरे अच्छे खाने अल्लाह के लिए, मेरी ज़ात की सबसे खूबसूरत चीज़ शादियों में नहीं, अल्लाह के लिए। आप फील करेंगे कि जो चीज़ प्यारी होती है ना उसके लिए बताना नहीं पड़ता, मोहब्बत तो इजहार के रंग मांगती है। एक छोटी सी कोंपल ज़मीन में से निकल कर अपना सर उठा के एक तने की सूरत में कैसे खड़ी होती है, ये इजहार है। तो मोहब्बत महबूब के लिए करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, असल बात यह है कि आप इस मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं। और एक जुमला लिखिएगा कि मोहब्बत कितनी है आपको किससे, आपको मुझसे कितनी मोहब्बत है, आपको अच्छे खाने से कितनी मोहब्बत है, आपको अपने शौहर से कितनी मोहब्बत है, आपको दीन से कितनी मोहब्बत है। कई डायमेंशन्स है ना, 10 दर्जे हैं मोहब्बत के, किसी जगह लिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह। लेकिन सिर्फ इतना समझें कि मोहब्बत का लेवल, आपका ताल्लुक कितना है, इसका मतलब ये है कि आपको उस चीज़ में दिलचस्पी कितनी है। यानी आप लिखिए लव वर्सेस इंटरेस्ट, आप उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं। आपके बच्चे को वीडियो गेम से मोहब्बत है, वो उसका सारा इंटरेस्ट वीडियो गेम्स में होगा, वो यूट्यूब खोलेगा तो वीडियो गेम चेक करेगा, वो आपके साथ मॉल में जाएगा तो वीडियो गेम्स के रैक पे जाएगा, उसको आप घर छोड़ दें रात को आधी रात तक वीडियो देखेगा। तो लव वर्सेस इंटरेस्ट, इंसान इस्लाम को इतना चाहे कि हर वक्त उसका इंटरेस्ट इस्लाम में, इस्लाम के नफ़े नुकसान को खुद अपना नफ़ा नुकसान समझे, इस्लाम की खुशी को अपनी खुशी और इस्लाम के सदमे को अपना सदमा समझे। असहाबे रसूल को इस्लाम से इसी किस्म का ताल्लुक़ पैदा हो गया था। ये है लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बुन। एक जुमला बड़ा बड़ा करके अपने नोट्स में लिख सकें तो लिखिएगा, वो इस्लाम के फ़ायदे से इसी तरह खुश होते थे जिस तरह कोई शख्स अपने बेटे की कामयाबी से खुश होता है। इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचे तो वो इसी तरह से बेचैन हो जाते थे जैसे कोई शख्स अपनी औलाद के मुतल्लिक ना खुशगवार खबर सुन के तड़प उठता है, और इस वक्त तक उसे चैन नहीं आता जब तक कि वो इसकी तलाफी ना कर ले। किसी चीज़ से मोहब्बत के दर्जे का ताल्लुक पैदा हो जाए तो इंसान का जहन उसके बारे में पूरी तरह जाग उठता है। सोई माँ जाग जाती है बच्चे के रोने की आवाज़ से, क्या हुआ, और खुदा नास्ता अगर बच्चा गिरा हो और उसको चोट लगी हो, माँ के चारों तबक रोशन हो जाते हैं, उसको अपना सर दर्द और नींद और बुखार भूल जाता है, वो खून में लिपटे हुए बच्चे को उठा के गेट की तरफ भागती है। फिर फिर वो उसकी खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो उसकी ज़रूरत और तकाज़ों को बताए बगैर जान लेता है। बच्चे ने कभी माँ से मांगा दूध? बेबी ने, माँ तो सोए बच्चे को उठाती है, हाय उठ नहीं रहा, हाय दूध नहीं पी रहा, हाय इतनी गहरी नींद है, ठीक तो है, जा जाके उसके हाथ नाक के पास रख के सांस ठीक आ रहा है। लिखिए, जिससे मोहब्बत होती है ना, इंसान उसके कहे बगैर उसकी ज़रूरतों को जान लेता है, उसके तकाज़ों को जान लेता है। उसकी बात को पाने के लिए कोई नफ्सियाती गिरा नहीं उसके रास्ते में रुकावट होती, और फिर जब उस रास्ते में हिस्सा बनने का मौका मिले तो कोई चीज़ उजर नहीं बनती। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। साहब कराम को ये लज्जत आशनाई मिल गई थी, लन तनालुल बिर्रा। और याद रखिए, जब इंसान किसी मामले को अपना मामला समझ ले तो ना उसको बताने की ज़रूरत होती है ना समझाने की। मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आज रात आपके घर में 50 लोग खाने पे आ रहे हैं। आपके घर में बहू भी है, बेटी भी है, एक दो पुरानी मेड्स भी हैं जो कि नॉर्मल घरों में होती हैं। अब आप कहते हैं कि 50 लोग आ रहे हैं। अच्छा, आपका जहन उन 50 लोगों को कैसे कैटर करने का है? आपकी बेटी तो बहुत ही अच्छी तरह जानती है क्योंकि वो पिछले 10-20 साल से आपके साथ है। बहू को भी 2-4 साल में आपका मिजाज समझ आ गया कि मामा इन गेस्ट को कैसे डील करना चाहेंगी। और जो पुरानी मेड है वो कहेगी, बाजी जाए जाए, आप जाके आराम करें, मैं टेक केयर करूँगी। कुछ लोग होते हैं आपके, हर जगह आपके पास कुछ लोग होते हैं, जब वो सामने आ जाए ना आप बीच में से निकल जाते हैं। और ये मैं अपनी आदत आपको बता दूँ, हर स्टेशन, हर जगह, जहाँ भी अल्लाह ने छोटा मोटा काम दीन का लिया ना, मैं नहीं बीच में पड़ती। लोग अल्लाह वो दे देता है जिनके अंदर इखलास होता है, फिर जान लगा कर उनको ट्रेनिंग दे दी जाती है, उसके बाद वो जाने और उनका काम, खुदा हाफिज, हम चले, तुम संभालो इस जगह को। अमेरिका से लेके आज पाकिस्तान में कदम आ चुके हैं, ये हर मुल्क में हमारा यही तरीक़ाकार है। क्योंकि जो लोग हैं उनको ज़्यादा फिक्र है उस जगह की, मेरे से मैं क्यों बीच में कूदूँ। उनको बता दिया, एक बल्ब तुमने फालतू जलाया, तुम्हारी गलती से स्कूल का बल्ब जलता रह गया ना, तो कल अगले दिन उसका हिसाब लगा के सदके में डाल जाना। ये खुद करके दिया। तुमसे एक प्लेट टूट गई है डोनेशन में आए हुए किसी कप की, इसके पैसे तुम सदके में डाल दो, बस फिर ठंडा दूध पी के सो जाए। कुछ लोग हैं वो आपके लैपटॉप को हाथ लगाए, आप कहते हैं इट्स ओके, क्योंकि वो आपका मिजाज समझ चुके हैं, वो आपके लैपटॉप को समझ चुके हैं, वो आपके टेक्निकल को समझ चुके हैं। साहबाए कराम का इस्लाम के साथ ये ताल्लुक था, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकु। वो इस्लाम को स्वभाव समझ के सपोर्ट नहीं करते थे। माफ़ कीजिए मुझे, अगर आप स्वभाव समझ के नेकियां कर रही हैं ना, कुरान पढ़ लूँ स्वभाव हो जाए, एक लफ्ज़ की 70 लफ्ज़ हैं, 70 की नेकियां, एक पारे को ज़रबें देंगे। अच्छा, उम्रे पे चलते हैं क्योंकि रमज़ान में उम्रे का स्वभाव हज का बराबर है, नबी सल्लम के साथ हज का है। माफ़ कर दें मुझे आप सब, मेरी बात को गलत ना लीजिए, साहबा ने कभी फ़जाइल और अमाल और उनकी फजीलतें, खूबियाँ, अदर देख कर नबी का साथ नहीं दिया। हज़रत अली को किसने कहा उस दिन के नबी के बिस्तर पे लेटो? कुछ सवाब पता था उनको कि हिजरत करते हुए रसूल के बिस्तर पे लेटने से जन्नत के बीच में सफ़ेद मोती का एक बड़ा सा महल चाहिए? कभी सुना? अपने घर का सारा सामान ले आओ तो भूख के मौके पे अबू बकर, तो आपको आधी जन्नत दे दी जाएगी, कोई एक रिवायत मिलती है? चलो उमर, ऐसा करो, आधा सामान अपने घर का उठाओ और जाके जैश उसरा के लिए डालो, और मैं तुम्हें जन्नत की 10 नहरें दे दूंगा। अल्लाह की कसम, आपको पूरे हदीस और सीरा और साहबा के अंदर आपको ऐसी कोई नहीं मिलेगी। क्यों? कि लन तनालुल बिर्रा। किसी माँ को किसी ने आज तक कहा कि इस बच्चे को दूध पिलाओ तो तुम्हें मैं एक सोने का सेट दे दूंगा? ये आपकी मजबूरी। देखिए, आपका भाई बहन भूखा और आप खाना खा रहे हैं, वो तो नहीं कहते आपको कि मुझे खाना भेजो। मोहब्बत कहती है, आप कहते हैं मेरा दिल पड़ा हुआ है, मेरे पास इतना है, मेरे भाई ने खाया कि नहीं खाया, मेरी बहन ने खाया कि नहीं खाया, मेरे शोहर ने खाया कि नहीं। हमारे हलक से नहीं उतरता अपने प्यारों के बगैर। मेरा बच्चा भूखा है, मैं कैसे खाऊं? मोहब्बत लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकु। मेरा लिए ये द मोस्ट रोमांटिक सफारा है अभी तक का बड़ा हुआ, ये मोहब्बतों का सफ़र है। अभी हमें ये मोहब्बत नहीं हुई, हम जमा तफरीक कैलकुलेटर लेकर कैलकुलेटिंग माइंड के साथ ए बी सी 2+2 3 इंटू दिस करके नेकियाँ करते हैं। हरम में एक नमाज एक लाख की है, चलो हरम में चलते हैं, मदीना में जाएंगे सलाम पढ़ेंगे, ये होगा। सहाबा ने ये कुछ नहीं देखा था, उनको दीन से मोहब्बत हो गई थी, उनका दिल जुड़ गया था, वो बगैर किसी मुआवजे की उम्मीद के यक तरफा तौर पे अपना सब कुछ उसके लिए लौटाने को तैयार थे, क्योंकि दीन उनको प्यारा लगा। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है ना, एक एक लफ्ज आपको मेरा समझ आ रहा है। और अगर आपने ना कभी मोहब्बत की, ना आपको मोहब्बत मिली, तो आप इस दीन की मोहब्बत को कहाँ समझे। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ, दीन को अपना बच्चा बना लेगा तो वो कैसे, पहले ही चार बच्चों का खर्चा नहीं पूरा होता, पांचवा डाल रहे हैं। आप कारोबारी ज़रात, आपके बाप भाई बेटे शौहर उनकी बिजनेस है, आप उन्हें कहते हैं आप इसमें दीन का हिस्सा डाल रहे हैं, आपकी कमाई में से इतना अल्लाह का, आपके हर महीने के प्रॉफिट में से इतना अल्लाह का। लोग कह दो लो ज़कात देने के पैसे कोई नहीं, आप ये बातें क्या सुना रहे हैं। और आपने सुना होगा जुनेद जमशेद चले गए दुनिया से, अल्लाह उनकी अच्छी जगह करे वहाँ, वो कहते हैं कि जब मैंने गाने छोड़े मैं कंगाल हो गया, क्योंकि पेशा ही वो था, पैसे ही वहाँ से आते थे। आखिर कुछ नहीं कुछ नहीं, कपड़े का काम शुरू किया, चल ही नहीं रहा। एक दिन किसी दीन वाले ने उनको कहा कि इसमें कुछ अल्लाह का हिस्सा डाल दो, उसके बाद वो कहते हैं मैंने जो है उसके अंदर अल्लाह का कुछ हिस्सा डाल दिया, उस दिन से लेके आज तक बरकत ही नहीं संभल रही। लंदन आलबेरा तनफे को, देखिए अल्लाह को खैरात नहीं चाहिए, अल्लाह को ज़कात नहीं चाहिए, बहुत शर्म आती है कोई आपको कहे ये ज़कात का जोड़ा है ये आप पहन लें, ये आपको मैं खैरात दे रही, ये आपके पास पैसे नहीं है ना, थोड़े से पैसे ले लें, जाएँ जाके दूध पानी ले लें, आप डूब मरेंगे शर्म से। हाँ लोग इज्जत से पेश करते हैं, मोहब्बत से पेश करते हैं, कोई आपके घर आके खाता है किसी के घर आप खाते हैं बिस्मिल्लाह, आप लोगों की शादियों में जाते लोग आपकी में जाते हैं बिस्मिल्लाह। दीन को इज्जत दीजिए, असल मसला ये है। ये दीन की इज्जत नीची और हमारे दुनिया के स्टेटस की इज्जत ऊंची, सहाबा में कतन ये नहीं था। ये जुमला जो आपने लिख लेना अपने दिल पे, दीन इनके लिए महबूब बन गया। और याद रखिए जब कोई आपका महबूब बन जाता है ना, तो उसकी खातिर कुछ खोना आपको पाना लगता है, यानी इफ़ यू आर लूजिंग समथिंग यू फील आई एम गेटिंग समथिंग। आपके अकाउंट में से 10 लाख रुपया निकला, स्टेटमेंट कह रही है कि टोटल बैलेंस 10 लाख कम हुआ, आप कहते हैं ये 10 लाख कम नहीं हुआ, ये मेरे अकाउंट में +10 लाख हुआ है। लंदना लुलबिरता तुनफे को। और फिर जब आपको किसी से मोहब्बत होती है ना, तो उसकी खातिर आप जब बेकीमत होते हैं ना, तो वो आपको सबसे ज़्यादा कीमती लगता है ना। आज आप अल्लाह के दीन की खातिर ज़रा से बेकीमती, वो कहते कि मेरी खातिर बेइज्जत हो के तो देख, इज़्ज़त की हद ना कर दूँ तो कहना, मेरे कूचे में बिक के तो देख, तुझे अनमोल ना कर दूँ तो कहना। ये उनसे पूछिए जिन्होंने पूरा टाइम, पूरी ज़िंदगी, जान माल वक्त, अपने एसेट्स, अपने घर बार सब अल्लाह को दे दिए। ये बातें इसके बगैर समझ आती भी नहीं है, ये भी बता दूँ। ये 2.5% वालों को नहीं समझ आती, 10% के उशर वालों को नहीं समझ आती। ये बातें समझ तब आती जब पूरा का पूरा बंदा अपने आप को जाके तराजू में रख दे कि अल्लाह मुझे तोल ले, जो मेरा वज़न बनता है वो तू ले ले, उसमें प्लस माइनस नहीं होते। और याद रखिए जब आपको किसी से मोहब्बत होती है ना, तो फिर आप सारी मसलतों को, प्रोज एंड कॉन्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर आप उस चीज़ के लिए, उस ज़ात के लिए, उस हस्ती के लिए हर वो तकलीफ़ ऐसे सहते हैं जैसे कि वो तकलीफ़ हो ही ना हो। लोग कहते हैं आप पत्थरों पे चल रहे हैं, आप कहते हैं ये फूल है, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ मेरे घर के रास्ते में कहकशानी। लोग कहेंगे हाय आपकी ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ों में, आप कहते हैं किधर है ये फूल है, हाथ लगाओ ये तो फॉर्म के फूल हैं। ये मोहब्बत आपको आती है जब, उसके बाद आप सारा दिन दीन के कामों में रहे, कभी आप बोले कभी सुने, कभी आपका दिमाग चल रहा है कभी प्लान। आप देखिए वो बंदा क्या हर वक्त इबादत की हालत में नहीं होगा, जिसके 24 घंटे सिर्फ दीन की बातें। मुझे अपने कई एडमिन्स हर वक्त ग्रुप्स में उनके मैसेजेस चीज़ें और पढ़ती देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ऐसा मुझे भी चुन ले, 24 घंटे कभी किसी मीटिंग का मैसेज, कभी किसी फलां का मैसेज, कभी कुछ मल्टी डायमेंशनल, और ज़िम्मेदारान को ये करना पड़ता। वो बीच में इतना सबक निकाल के जल्दी से अपने बच्चों के काम कर लेते हैं, वो इतना सबक निकाल के मियाँ को खुश कराते हैं, वो इतनी सी देर में आके अपने घर की जिम्मेदारियाँ और बुज़ुर्गों को देख लेते हैं, वो जल्दी से झट से जाकर शादी में तोहफा दे दे के आ जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग इसमें लगा है। अल्लाह उसकी कदर क्यों ना करे। सहाबाए कराम ऐसे थे, कोई गैर मामूली इंसान नहीं थे, मा फोकल फितरत नहीं थे, मा रवाय बशर नहीं थे, दे वर ह्यूमन बीइंग। गोश्त पोस के इंसान थे, उनका भी H2O लाजमी था, उनके अंदर भी हीमोग्लोबिन की एक खास मिकदार थी, उनके अंदर भी कैल्शियम का एक लेवल था, उनके अंदर भी प्लेटलेट्स थे, उनके अंदर भी रेड सेल्स थे, वाइट सेल्स थे, उनका भी एक हार्ट और दो किडनी और उनके जिस्म में हर वो चीज़ थी जो आपके मेरे में। फिर उनको दर्द क्यों नहीं होती थी कोयलों पर लिटाने से? फिर वो गारे सौर में मुस्कुराते हुए क्यों जाते थे? फिर वो नबी के बिस्तर पे अली जैसे एक जर्री और एक शुजात वाले शख्स की तरह लेटते क्यों थे? उनकी एक खूबी, आज इस बारे के साथ रट के जाइएगा, ओनली वन थिंग, और वो क्या थी? उनको दीन से मोहब्बत हो गई थी। दे वर इन लव विद दीन, दे वर इंडल्ज। दीन ऊपर से ब्लॉक प्रिंट की तरह ठप्पो ठप्पो में बड़ा खूबसूरत प्रिंट नहीं था, दीन उनके अंदर ताने बाने हैं ना उसमें गुंदा हुआ था। आप एक प्रिंटेड सूट लेते हैं, साल पहनते रहे उसका रंग नहीं बदलता, क्योंकि वो सिलाई के अंदर बुनाई के अंदर था। और आप ब्लॉक प्रिंट एक दफ़ा धो ले, अगली दफ़ा उसमें से 20% रंग कम हो जाना है। हमारा दीन ब्लॉक प्रिंट वाला है, ये जुमला लिख ले। हम ऊपर से सजे सजाए दीन मसनदों पे बैठे हुए और न जाने क्या कुछ, साहबा के अंदर दीन था, गुंदा हुआ था। आटे में जो नमक गुंद जाता है ना उसका अपना टेस्ट है, और अगर भूल जाए और बाद में रोटी के पकने के दौरान नमक डालें, कहीं ढेली होगी कहीं नहीं, पकते चावलों में नमक डाल दें तो ठीक है, पके हुए में डालें देखिए ज़रा फिर क्या होता है, उस दिन लड़ाई पकी है घर में, और निकलना भी मियाँ साहब की प्लेट में से ही है नमक का डला। हमारा दीन ये ऊपरा दीन है, ऊपर से डाल दो, ऊपर बादाम पिस्ते सजा दो, जो ऊपर का हिस्सा है क्रस्ट अच्छा लगेगा, खीर पकी हुई है। और जिसने आपको एनर्जी के लेवल पे अच्छा हेल्दी खाना खिलाना होता है ना, वो मुट्ठी भर के बादामों की खीर में डाल के अंदर घोल दी है कि आपके मुंह में चले जाएं। बच्चे ने ऊपर से हटा देने इसको अंदर, अच्छा इसे ऐसे भी नहीं खाना ना, तो पकड़ के इसको क्रश करके ना खीर में डाल दो। आपने भी कभी अपने मियाँ और अपने बच्चों के लिए ऐसे खाने पकाए होंगे, मर्दों को पता लग जाए ना बीवियाँ उनको क्या खिलाती हैं, जब माएँ क्या घोट घोट के खिलाती हैं तो फिर समझ आए कि इस खाने में इतना लज्जत क्यों है। वो प्यार का खाना होता है, एक खाना आपकी माँ आपके लिए बनाती है और एक आप बाहर वाली माँ से खाते हैं जो कि फ्रेंचाइजी बैठे हैं आपके लिए, बड़ा फ़र्क है। पम्पी ग्लैमरी वो है, लश लश वो करता है, उसमें टेस्ट इन्हेंसर्स हैं, उसके फ्रेंच फ्राइज़ को सूंघ के दिल करता है खाने को, लेकिन वो जो माँ के हाथ का रोटी सालन है ना वो असल खाना वो है। साहबा के लिए दीन असल में ये दीन था, मोहब्बत का ताल्लुक था, उनको दीन और ईमान से मोहब्बत हो गई थी। मैं लफ्ज़ इश्क बोलना नहीं चाहती, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि नबी की ज़िंदगी में ये लफ्ज़ नहीं था। आज नातों वगैरह में भी हो ना तो थोड़ा अवॉइड किया करें, हुब अहबती। और याद रखिए एक और खूबी लिख ले, सहाबा को दीन से इतनी मोहब्बत थी जितनी आम लोगों को अपने आप से होती है। सहाबा को दीन इस्लाम के मुस्तकबिल की इतनी फिक्र थी जितनी आम लोगों को अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र होती है। आम इंसान अपने फ्यूचर को जो अहमियत देता है ना, सहाबा कराम वही अहमियत इस्लाम के फ्यूचर को देते थे, और आम लोग अपने फ्यूचर को बिल्ड करने और सिक्योर करने में जितनी एफर्ट लगाते हैं ना, बच्चों के बच्चों के बच्चों का घर बन जाए, अपना बन गया बच्चों का भी घर बन जाए, अब बच्चों के भी घर बन जाए, सात नस्लें हमारी खाना खा लें ना और रह लें और बिजली और पानियों के बिल दे दें, तो अल्लाह की रहमत से भूखे नहीं मरेंगे। आज एक एवरेज हमारे इर्द गिर्द रहने वाले भाई और बेटे और बाप के बस इतना माल है, जायदाद हैं, ज़मींदारों को देखें गांव के गांव उनके अपने हैं, और फैक्ट्रियों वालों को देख लीजिए और मिल ओनर्स को देख लीजिए, सात नस्लें खा सकती हैं, फिर भी हौका क्या है, महंगाई है, ये हो गया, टैक्स लग गया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया। सहाबा किराम को इतनी ज़्यादा फिक्र दीन की थी जितनी हमें अपने मुस्तकबिल की है, और वो दीन के लिए अपना हिस्सा डालने को, दीन का हिस्सा बनने को इतना ज़रूरी समझते थे जितना कोई शख्स अपनी हॉबीज़ पे खर्च करता है, अपने इंटरेस्ट पे खर्च करता है, अपने इंटरेस्ट अपनी दिलचस्पियों पे खर्च करता है। और ये वो खूबी थी कि जिसकी वजह से तारीख का वो गिरोह बन गए जिसने इस्लाम को अजीम तरीन कामयाबियों के मुकाम पे डाल दिया। तो ये आसान बात नहीं है, आप और मैं भी ऐसे बन सकते हैं, आप और मैं ऐसा कर लेंगे तो हमारे लिए हर बात समझनी आसान हो जाएगी। वरना वही कहता है ना कि जानता हूँ सवाबे जोहद, लेकिन तबीयत इधर नहीं आती। शायर कहते हैं कि मुझे पता है जोहद का बड़ा सवाब है। जोहद कहते हैं तरके दुनिया, कहते हैं मुझे पता है जोहद का बड़ा अजर है, पर मैं क्या करूं, मेरी तबीयत इधर नहीं आती। हम तो बस जमा तफरीक के साथ ही नेकियां कर लें तो बड़ी बात है। तो लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून। आज तड़प के, रो के, जा के तन्हाई में, आज के रोज़े की इफ्तारी के वक्त अल्लाह से ये दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे दीन से मोहब्बत हो जाए, दीन की मोहब्बत मेरे अंदर घुस जाए, ऐसे घुस जाए, ऐसे घुस जाए कि फिर मेरे से कोई अलग करने लगे ना तो हटे ही ना। आप देखिए कभी आपके बालों में च्युइंगम फंस जाए, बचपन में लग जाती थी, ज़रूर लगी होगी आपके भी, उस च्युइंगम को छुड़ाते छुड़ाते आपके बाल खिंचने लगते थे और बिल आखिर फिर आप क्या करते थे, बालों की लट काटते थे। आज से दुआ कीजिए अल्लाह मेरे दिल में दीन ऐसे खुब जाए कि अगर कोई मुझे दीन से जुदा करने लगे तो मैं कट ही जाऊँ। यही है शहादत हक के रास्ते में शहादत देना। और हज़रत अली की शान में चंद जुमले नोट कीजिए। अली बिन अबी तालिब खुलफ़ाए राशिदीन में से आखिरी नाम, कुनियत अबू तुराब। मट्टी पे लेटा हुआ शख्स नबी को देखता है तो नबी कहते हैं कि आज से आप अबू तुराब हैं। दुनिया का इतना खूबसूरत इंसान, नबी का दामाद, फातिमा का शौहर, और ज़मीन पे लेटा है और कपड़ों पे मट्टी लग गई। अल्लाह के नबी ने हज़रत अली के लिए क्या फरमाया, ये जो मैंने अभी बात बताई ना अबू तुराब वाली, इसका रेफरेंस लिखें सही बुखारी 3703 में, तवील हदीस है, मैं इसको ओवरलुक करूँगी, और मुस्लिम में 6229 आप ख़ुद पढ़िए, लेकिन अबू तुराब नाम दिया। एक और अल्लाह के नबी का इनके लिए खूबसूरत जुमला फरमाया, अली तुम्हारा मुकाम मेरे हाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जैसा। यानी मूसा और हारून सगे भाई थे और अल्लाह के नबी और हज़रत अली चचेरे भाई थे, कज़न थे, लेकिन आपने एक मौके पे इनको ये ऑनर दी कि आप मेरे लिए बिल्कुल हारून की तरह, और इनको झंडा भी दिया था। ये सही मुस्लिम की रिवायत जाके आप ख़ुद पढ़िएगा 6221 और 6220। और इसी तरह से हज़रत अली को यही बात आपने तिर्मिज़ी में भी और बुखारी और मुस्लिम की और रिवायात में, बस एक दो भी काफ़ी हैं। फिर अगली बात नोट कीजिए कि हज़रत अली की खूबी क्या है। अल्लाह के नबी ने इनको अपने हाथ से झंडा दिया, इल्म दिया। आपने फरमाया खैबर के दिन कि आज मैं झंडा उसको दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू, और आपने वहीं बता दिया कि आज उसके हाथ से खैबर फतह होगा। हज़रत उमर कहते हैं मैंने सारी ज़िंदगी कभी किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं की, कोई टाइटल कोई लकब लेने के लिए मेरे दिल में ख्वाहिश नहीं आई, लेकिन उस दिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश आ गई थी कि कभी कल झंडा मुझे मिल जाए। क्योंकि नबी ने क्या कहा, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और खैबर उसके हाथों फतह होगा। और वो कहते हैं कि जब अगला दिन आया तो मैं इस उम्मीद पे आके सामने बैठ गया कि अल्लाह के नबी मुझे कहेंगे, लेकिन आपने फरमाया कि अली को बुलाओ। हज़रत अली को झंडा दिया, आपने फरमाया कि अल्लाह तेरे हाथों से इसको करेगा फतह। सुभान अल्लाह। हज़रत अली ने आपकी ये बात सुनी, रावी कहते हैं कि कुछ चले और कुछ देर ठहर गए और तवज्जो ना की, फिर बोले अल्लाह के रसूल मैं लोगों से किस बात पर चिताल करूँ, किस बात पे किताल करूँ। फरमाया तब तक जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही ना दे, यानी कलमा पढ़ ले तो जाने बच जाएंगी वरना नहीं। सही बुखारी की रवायत है ये 3702 और मुस्लिम 3624। एक और अल्लाह के नबी का खूबसूरत जुमला नोट कीजिए हज़रत अली के बारे में, फरमाया कि अली रज़ी अल्लाहु अन्हो अल्लाह और उसके रसूल को दोस्त रखते हैं। यानी आपकी इस मोहब्बत को अल्लाह के नबी ने एडमिट किया, एक सफ़र में आप साथ थे। हज़रत अली गर्मी के कपड़े जाड़े में पहनते और जाड़े के कपड़े गर्मी में पहनते। साथियों के दिल में ख्याल आ गया कैसा क्यों है, हमने कहा काश हम इनसे पूछें। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह ने मेरे पास किसी को भेजा और मेरी आंखें दुखती थी, मैंने हाजिर होकर अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल मेरी आंखों में दर्द है, यानी आंखें ख़राब हो चुकी थी, आपने अपना थूक मेरी आंख में डाल दिया और फरमाया ऐ अल्लाह इससे गर्मी और जाड़े को दूर रख। ये नबी की दुआ थी इनके लिए। बस मुझे उस दिन से ना गर्मी लगी और ना सर्दी लगी। अपने लिए दुआ करें। ना मैं सर्दी रोक सके अल्लाह के रस्तों में निकलने से, ना गर्मी, ना धूप, ना छांव, ना बारिश, ना बर्फ। आप कहते हैं नॉर्वे में अभी तक स्नो है, और स्नो में भी अल्लाह अपने काम लोगों के ले रहे। स्कूलों वाले स्कूल जाते, कॉलेज वाले कॉलेज जाते, कमाने वाले कमाने जाते, और आपको मुझे क्या मिलता है? चार छींटों के बाद हम घर बैठ जाएंगे? नमक के तो नहीं बने हुए कि खुर जाएंगे? बर्फ़ के तो नहीं बने हुए जो पिघल जाएंगे? हज़रत अली कहते हैं कि उस दिन के बाद मुझे गर्मी सर्दी नहीं लगी। पता ही नहीं होता था मोटे पहने हैं कि पतले पहने हैं। और आपने फरमाया कि मैं ऐसे शख्स को भेजूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल को दोस्त रखता है, और अल्लाह और उसका रसूल उसको दोस्त रखता है, वो हरगिज़ भगोड़ा नहीं। यानी आपने इतनी तारीफ़ें फरमाई हज़रत अली की कि लोग यूँ आंखें उठा के देखने लगे हैं कि वो कौन शख्स होगा कि जिसकी अल्लाह के नबी ने बात की। आपने हज़रत अली को बुला भेजा और लड़ाई का झंडा इनको दिया, और जिस पर फिर खैबर फतह हुआ। ये इब्ने माजा की रिवायत है 117 नंबर की। और अल्लाह के नबी का इनके बारे में एक और बात, हज़रत अली क्या कहते थे? मैं अल्लाह ताला के रसूल का भाई हूँ। आपने कहा मैं बंदा हूँ अल्लाह का और भाई हूँ उसके रसूल का। अल्लाह अकबर, दुरूद और सलाम। और बहुत प्यारी रिवायत है इब्ने माजा की, ये रिवायत 120 है, पूरी सुन लीजिए, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं। कहते हैं बंदा हूँ मैं अल्लाह का और भाई हूँ मैं उसके रसूल का, दरूद है अल्लाह का इन पर और सलाम है, और मैं बड़ा सिद्दीक हूँ, मेरे बाद इस फजीलत का दावा कोई नहीं करेगा मगर झूठा। मैंने सब लोगों से 7 साल 7 ईयर्स पहले नमाज पढ़ी थी। बहुत छोटी उम्र में मुसलमान हो गए थे। बहरहाल हज़रत अली की एक और ख़ूबी नोट कीजिएगा, सबसे पहले नमाज हज़रत अली ने पढ़ी थी। ये तिरमिज़ी की रिवायत है 3734। और अल्लाह के नबी ने इनके बारे में कहा अली मुझसे है और मैं उससे हूँ। ये इब्ने माजा की रिवायत है 119। और इसी तरह से एक और लश्कर में भेजा, बहादुर बहुत है, जर्री बहुत है। जब भी कहीं गए अल्लाह ने इनके हाथों फतह भी दी, और इन्होंने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात की। और इसी तरह से इनके साथ जिम्मेदारियों की भी बात थी, और बहुत कुछ है। मेरा ख्याल है कि एक बात और सुन लीजिए, अली रज़ी अल्लाह अन्हु का घराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का उम्दा घराना है। क्यों भला? क्योंकि आपकी बेटी आपकी ज़ौजियत में थी, और आपके नवासे जो प्यारे बच्चे हसन और हुसैन रदी अल्लाहु अन्हुमा, वो हज़रत अली के घर में थे। ये बुखारी की रिवायत आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा 3704। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी ऐसी ही खूबसूरत बीवी थी कि जो अपने शौहर अली के लिए बहुत आराम का ज़रिया बनती। और वह हदीस सही बुखारी में 3705 है कि जिसमें आपने शिकायत की कि चक्की पीसते पीसते मेरे हाथ थक गए, और आपने फिर उनको तस्बीहात फातिमा बताई। और अली रज़ी अल्लाह अन्हु अहले बैत में से हैं, अल्लाह के नबी की बेटी के शौहर अहले बैत में से। इस पे भी बहुत तवील बात है, तो बस यहाँ ये बात करके हम आगे चलते हैं कि अल्लाह ताला उसको दोस्त रखे जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु को दोस्त रखता है। हज़रत अली से मोहब्बत ईमान का तकाज़ा है। हम मुसलमानों का जिस्म का एक एक कतरा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत में भरा होगा। इब्ने माजा की रिवायत 116 पढ़ लीजिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसका वली अली है, यानी ये भी वली है जिसका मैं मौला हूँ, जो इनसे दोस्ती रखे मैं उससे दोस्ती रखता हूँ, जो इनसे अदावत रखे मैं उनसे अदावत रखता हूँ। अल्लाह ताला हमारे दिलों में इन हस्तियों की मोहब्बत बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर किसी चीज़ के डाल दे, और अल्लाह ताला हमें भी ऐसा ही ईमान दे कि हम इस दीन से मोहब्बत करने लगें।